हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विधिक के सामने आंशी के प्रेग्नेंट होने का सच आ चुका था। सुबह आंशी, विधिक और हरलीन की इंडिया की फ्लाइट थी, लेकिन सब सामने आने के बाद विधिक ने गुस्से में आंशी को कमरे में बंद कर दिया। बाद में विधिक और हरलीन की बात हुई तो हरलीन ने विधिक को यही समझाया कि वो आंशी को आज़ाद कर दे। विधिक के लिए आंशी को आज़ाद करना वैसा ही था जैसे अपनी सांसों को खुद से अलग करना। विधिक ने हरलीन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बार एरिया में चला गया। वो इस वक्त ड्रिंक कर रहा था। आप मेरे साथ नहीं थी बुआ, ना ही मैंने बटरफ्लाई की तरह सबको अपनी लव स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ ये सब हुआ था। आप नहीं जानते, उसके छोड़कर जाने के बाद मैंने हर एक दिन कितना मुश्किल से बिताया है। ऐसे कैसे अपने प्यार को किसी और को सौंप दूं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मुझे फिर से उसे याद करके तड़पना नहीं है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत होगी, मैं ये कैसे झेल पाऊंगा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पूरी दुनिया जीत ली मैंने और अपने ही प्यार को नहीं जीत पाया। सब कुछ बेमानी सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने तुम्हारी हर बात मानी बटरफ्लाई, और सब कुछ छोड़ दिया। फिर भी तुम उस इंसान से प्यार करती हो जिससे तुम्हें मिले हुए ठीक से एक साल भी नहीं हुआ होगा। वो चीटर है, वो पहले ही दो लड़कियों को अपने पीछे घुमा रहा है। तुम कैसे उसके जाल में फंस सकती हो? विधिक इस वक्त काफी दर्द में था और वो पीते हुए खुद से बातें कर रहा था। विधिक ने काफी सारी ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो अपने कमरे में गया और बिस्तर पर गिर गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई थी और वो ये तक भूल गया था कि उसने आंशी को कमरे में बंद किया और हरलीन को वहां जाने से मना कर रखा है। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन विधिक अब तक नहीं उठा। वहीं आंशी कमरे में अकेली थी। उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था और अब तो उसके पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। कुछ भी ना खाने की वजह से आंशी के पेट में दर्द हो रहा था। वो अपना पेट पकड़कर बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। आंशी ने सुबकते हुए कहा, तो तुम इस तरह से मुझे टॉर्चर करोगे विधिक? तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझे अमन से दूर रखना चाहते हो तो बेशक रख सकते हो, लेकिन मेरा दिल हमेशा उसके लिए धड़केगा। अब तो मेरे पास एक और वजह है उससे प्यार करने की, उसका और मेरा बच्चा। मैं कभी हमारे बच्चे को खुद से अलग नहीं होने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान भी क्यों ना ले लो विधिक। आंशी खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं हरलीन को आंशी की फिक्र हो रही थी। उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी। विधिक के मना करने की वजह से हरलीन आंशी के पास नहीं जा पाई, लेकिन जब शाम हो गई तो मजबूरन हरलीन को विधिक से बात करने जाना पड़ा। विधिक अपने कमरे में सोया हुआ था, उसने जूते तक नहीं निकाले थे। हरलीन ने उसे जागते हुए कहा, उठो विधिक, तुम्हें इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए थी। तुम ड्रिंक नहीं करते हो तो तुमसे हैंडल भी नहीं होती है। तुम्हें आंशी को खाना देने जाना होगा, तुम इस तरह उसके साथ क्रूएल नहीं हो सकते। हरलीन ने विधिक के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे जिससे उसकी नींद टूटी। वो उठकर अंगड़ाई लेते हुए बोला, टाइम क्या हुआ है बुआ? लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया। रात के 8 बज रहे हैं विधिक, और सुबह तुमने 7:30 बजे उसे कमरे में बंद किया था। 12 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया और उसने कुछ खाया पिया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब उसके पास पीने के लिए पानी भी बचा होगा, हरलीन ने बुझी आवाज़ में कहा। तो विधिक जल्दी से उठकर दौड़कर आंशी के कमरे में जाने लगा। विधिक को इस तरह की आंशी की फिक्र में भागते हुए देखकर हरलीन ने धीरे से कहा, दुनिया के लिए तुम कितने भी बुरे हो सकते हो, लेकिन आंशी के प्यार में तुम्हारे दिल में 1% भी खोट नहीं है विधिक। वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी तुम उसे उतना ही प्यार करते हो और उसकी फिक्र में इस तरह भाग कर गए हो। आई होप तुम जल्दी डिसीजन ले लो और तुम्हारी बटरफ्लाई को आज़ाद कर दो। हरलीन वहाँ से आंशी के लिए खाना तैयार करवाने के लिए किचन एरिया में गई, तो वहीं विधिक दौड़कर आंशी के कमरे में पहुँचा। उसने देखा आंशी ज़मीन पर गिरी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो अपने पेट को पकड़े हुए थी। आंशी बेहोश हो गई थी। विधिक ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। विधिक उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उठो ना बटरफ्लाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह बेहोश क्यों हो गई? बटरफ्लाई होश में आओ। आंशी को बेहोश देखकर विधिक घबरा गया। वो उसे पर पानी के छींटे डालने लगा। कुछ ही देर में आंशी को होश आया तो विधिक ने उसे पानी पिलाया और उसके गले लग गया। आंशी को ठीक देखकर उसकी सांस में सांस आई। विधिक आंशी को सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी बटरफ्लाई, आगे से नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम इतनी देर से बंद हो और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं ठीक हूँ विधिक, आंशी ने धीरे से कहा और विधिक से अलग हो गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। विदिक ने आंशी को हाथ पकड़कर बेड से नीचे उतारा और उसे नीचे ले जाते हुए बोला, पहले तुम कुछ खा लो बटरफ्लाई, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। आगे से ध्यान रखूंगा, तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। विदिक आंशी को डाइनिंग एरिया में लेकर आया जहां हरलीन ने खाना पहले से तैयार करवा कर रखा था। विदिक अपने हाथों से आंशी को खाना खिला रहा था। आंशी कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप विदिक के हाथों से खाना खा रही थी। खाना खत्म हो जाने के बाद विदिक ने आंशी से कहा, चलो बटरफ्लाई बात करते हैं। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी, हालांकि उसे विदिक के साथ अकेले जाने में डर लग रहा था। विदिक के साथ जाने से पहले उसने हरलीन की तरफ देखा तो हरलीन ने आंखों ही आंखों में उसे रिलैक्स रहने को कहा। आंशी विदिक के साथ ऊपर कमरे में गई। विदिक ने आंशी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच जानना है मुझे बटरफ्लाई, प्यार करती हो तुम उससे, मुझे झूठ मत बोलना। आंशी ने विदिक की आंखों में देखा। आज वो विदिक की आंखों में दर्द महसूस कर सकती थी। आंशी को आज विदिक की आंखों में क्रुएलिटी के बजाय इमोशंस दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें नम थी। आंशी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। आंशी के हामी भरते ही विदिक के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने आगे पूछा, क्या मुझसे भी ज्यादा प्यार हो गया तुम्हें उस सीक्रेट एजेंट से? बोलते हुए विदिक की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। ये इस बात की निशानी थी कि ये सवाल पूछते वक्त विदिक को दिल ही दिल में कितना दर्द महसूस हो रहा था। आंशी ने विदिक की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुमसे ज्यादा प्यार तो शायद मैं किसी से ना कर पाऊं, लेकिन हाँ मैं अब उससे प्यार करती हूँ। तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ दी है विदिक, और तुम इस बात को अच्छे से जानते हो। तुमने मुझे मेरे हर एक अपने को छीन लिया, मुझे तकलीफ दी। तुम्हारी वजह से मैं डर डर के जीती थी, लेकिन जब से वो मुझे मिला है मेरा डर खत्म हो गया। मैं उसके साथ सिक्योर फील करती हूँ। ऐसा लगता है वो मुझे दुनिया की हर एक तकलीफ से बचा लेगा।
अब बस करो बटरफ्लाई, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन पाऊंगा, विदिक ने आंशी को बीच में टोकते हुए कहा। तो आंशी चुप हो गई। कुछ पल रुकने के बाद विदिक आगे बोला, अच्छा बटरफ्लाई, अगर मैं तुम्हारे सामने ऑप्शन रखूंगा, तुम्हें अपने बच्चे और अमन कपूर में से किसी एक को चूज करना है, तो तुम किसे चूज करोगी? तुम उसके पास गई तो बच्चा तो और भी पैदा हो सकता है, लेकिन इस बच्चे के साथ तुम मेरे पास रही तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे वही प्यार देना होगा जो तुम मुझसे पहले करती थी। हमारी शादी होगी, वो सब होगा जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, तो क्या तुम मेरे साथ अमन कपूर के बच्चे के साथ आगे बढ़ पाओगी? आंशी के लिए ये फैसला मुश्किल था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं करोगे तो। आई प्रॉमिस मैं कभी किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करूंगी, पर हाँ मैं तुमसे वो प्यार कभी नहीं कर पाऊंगी विधिक। फिजिकली मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल अमन के साथ ही होगा। तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आंशी का जवाब सुनकर विधिक ने रोते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो बटरफ्लाई, मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं तुम्हारी सोल चाहिए। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें बिना टच किए हुए तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, बशर्ते तुम्हें मुझे पूरे दिल से अनकंडीशनल प्यार करना होगा। आंशी ने पहली बार विधिक की आंखों में आंसू देखे थे। वो एक ऐसा शख्स था जो कभी अपने इमोशंस शो नहीं करता था, लेकिन आज आंशी के सामने विधिक पूरी तरह हार गया था। इस वजह से आंशी को उससे डर नहीं लग रहा था। आंशी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी विधिक, ये मुझसे नहीं होगा। तुम क्यों जिद कर रहे हो? दुनिया में बहुत सी अरेंज मैरिजेस होती हैं जिनमें प्यार नहीं होता है, तो बस यूं ही समझ लेना हमारी अरेंज मैरिज हुई है। आंशी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। आज पहली बार वो विधिक के सामने खुलकर अपने दिल की बात रख पा रही थी। विधिक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने आंसू साफ किए। उसने दिल ही दिल में खुद को मजबूत करके कहा, ठीक है बटरफ्लाई, तुम्हारी आज़ादी का वक्त आ गया है। योग की बात सुनकर आंशी के चेहरे पर घबराहट के भाव थे, तो विधिक ने उसके गाल को सहलाकर कहा, घबराओ मत बटरफ्लाई, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। शायद यही सोचकर उन लोगों ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। मैं चाहकर भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, जान लेना तो दूर की बात है। हम इंडिया चलेंगे, तुम उसके पास वापस रहने जा सकती हो। मैं अब तक इसीलिए तुम्हें पाना चाहता था क्योंकि मुझे यही लगता था कि अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, लेकिन तुम्हारे बच्चे ने यह साबित कर दिया कि हमारा प्यार खत्म हो गया है। तो तुम मुझे इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि अमन ने मुझे टच किया है? कि आज से पहले तुम कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुए थे विधिक? आंशी ने हैरानी से पूछा। उसकी बात के जवाब में विधिक कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोला, मेरे लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं बटरफ्लाई, मैं एक प्लेबॉय था और मैं आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व हुआ उनके साथ मेरी फीलिंग्स नहीं जुड़ी हुई थी। और अफसोस की बात यह है, जिसे मैं दिल से प्यार करता था उसके कभी इतना करीब आ ही नहीं पाया। मैंने कहा ना, तुम सबसे अलग हो, तुम्हें उससे प्यार है तभी तुमने उसे अपने करीब आने दिया होगा। तुम्हारे और मेरे किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने में फ़र्क है। मैं अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए किसी और के करीब गया था, जबकि तुम अपने प्यार के चलते। देर से ही सही, लेकिन विधिक को सब समझ आ गया था और उसने अपनी तरफ से फैसला ले लिया था, और वो था आंशी को आज़ाद करने का। आंशी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विधिक इतनी आसानी से उसे जाने दे रहा है। आंशी सोच ही रही थी कि तभी विधिक ने धीरे से कहा, बटरफ्लाई, क्या तुम पहले की तरह मुझे एक बार हक कर सकती हो जहां तुम उसकी वाइफ नहीं मेरी बटरफ्लाई रहो। विधिक की बटरफ्लाई जो उसे पागलों की तरह प्यार करती थी और हमेशा करीब आने की जिद करती थी। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी और उसे गले लगा लिया। आंशी के दिल में हजारों सवाल थे कि विधिक ने यह फैसला क्यों लिया होगा, तो वहीं विधिक के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। क्या लगता है आपको, ये विधिक की कोई चाल है या फिर सच में उसने ऐसा डिसीजन लिया है? जो भी हो, कहानी काफी दिलचस्प रहने वाली है। आखिरी पार्ट आने से पहले ढेर सारी समीक्षा कर देना और लास्ट पार्ट पर तो इतनी समीक्षा करना कि सारे रिकॉर्ड ही टूट जाएं।